श्री गौर निकाय की श्रील प्रभुपाद की ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेर्सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय पांच श्लोक क्रमांक सात। शब्दों का परिचय। त्वम पर्यटन और कह इव त्री लोकम अंतः चरह वायोः इव आत्मा साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतः व्रतैः स्नातस्य मे यूनम् अलम् विचक्ष्व त्वं पर्यटनकैव त्रिलोकी तं पर्यटनर्कैव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व त्वं पर्यटनकैव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व
का अनुवाद इस प्रकार है। त्वम
आप पर्यटन विचरण करते हुए और कहा सूर्य इव सदृश त्रिलोकम तीनों लोक में अंतःचर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने वाले वायु इव सर्वव्यापी वायु की भांति ब्रह्मणि ब्रह्म में धर्मतः अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत व्रते ही व्रत में स्नातस्य लीन रहने वाले में मेरा न्यूनम कमी दोष अलम स्वस्थ रूप से विचक्षवा खोज निकाले। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। आप सूर्य के समान तीनों लोगों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकाले। तात्पर्य दिव्य अनुभूति पुण्यकर्म देव पूजा दान दया अहिंसा तथा कड़े अनुशासन नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चेतैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथामिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यजीवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखामिदं स हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते सत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जस्ट केवल एक ही लाइन है तात्पर्य प्रभुपाद जी का श्लोक में। श्लोक चार लाइन का है। जिग्नेश को आप कंटिन्यू पहनते हो क्या? कभी डालोगे कंटिन्यू? कल कहाँ गए थे? सुबह तो फिर आगे लाइए ही मत। फिर चार महीने बंद हो गया तो बंद ही कर देना चाहिए। कई लोग चतुर्मास से छोड़ते हैं मालूम है। बिल्कुल मत करना। उसके लिए नहीं डाला था ना? उसके लिए नहीं डाला था ना? क्या ठीक है, अभी मत डालना। तो ये जो तीन श्लोक हैं व्यासदेव बोलते हैं श्लोक 5, 6 और 7 ये नारद मुनि के गुणगान है। नारद मुनि के बारे में है। नारद मुनि के गुणों के बारे में व्यासदेव बतलाते हैं। कल के श्लोक में हमने देखा कि व्यासदेव क्यों नारद मुनि के शरण में जाते हैं। तो पहले श्लोक में बताया गया था कि इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मा जी के लड़के हैं और ब्रह्मा जी स्वयंभू है और आदि कवि है। और कल परसों का श्लोक था। कल का श्लोक यह था कि ये जो नारद मुनि है वो भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्त हैं जो भौतिक संसार का सृष्टि और संहार और आध्यात्मिक जगत का पालन करते हैं, ऐसे भगवान के वो भक्त हैं। इसलिए वही हृदय की बातों को जान सकते हैं, इसलिए उनके शरण में नारद मुनि जाते हैं। आज के श्लोक में फिर से क्या कहते हैं कि हाँ हाँ आप जो है तीनों लोकों में घूमते रहते हो, है कि नहीं, साथ साथ में वायु की तरह सबके हृदय में भी प्रवेश कर सकते हो आप। इसीलिए आप परमात्मा की जैसे हैं, परमात्मा नहीं है कि नहीं, परमात्मा की जैसे हैं। तो मेरे अंदर मैं सभी व्रतों को पालन कर रहा हूँ, नियमों को पालन कर रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरे अंदर कुछ तो कमी है, तो कृपया आप उस कमी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि आप सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं परमात्मा की जैसा, इसलिए आप मुझे बताइए। ये अनुवाद है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक ही एक लाइन में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अनुभूति, पुण्य कर्म, देवताओं की पूजा, दान, दया, अहिंसा, ये सारा और शास्त्र अध्ययन, नियमों का पालन, ये सब हमेशा मनुष्यों के लिए हेल्पफुल बनता है, सहायक बनता है। तो ये तात्पर्य से ये श्लोक का क्या संबंध है? श्लोक है कि आप परमात्मा के जैसा सबके हृदय में प्रवेश करते हो, तीनों लोग घूमते हो, इसलिए मेरे अंदर की कमी को बताओ, ये श्लोक है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो दान, धर्म, तपस्या, शास्त्र अध्ययन, ये सब जो है लोगों के लिए सहायक है। तो क्या संबंध है? तात्पर्य हमेशा क्या होना चाहिए? श्लोक को समझाने के लिए होना चाहिए ना। तो ये एक लाइन श्लोक को क्या समझा रहा है, थोड़ा सोच के बोलिए। नहीं, नारद मुनि के पास, हाँ, मगर ये दान, धर्म, तपस्या, अहिंसा, शास्त्र देने व्यक्ति को हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा? हाँ, ये पॉइंट है। एक्चुअली ये लाइन एक्चुअली व्यास देव जी के लिए है। व्यास देव नारद मुनि के शरण में गए, राइट, और नारद मुनि के शरण में जाके उनको क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर की कमियों को बताओ। ये व्यक्ति के अंदर की कमियां कब पता लगेगा? जब ये सारे एक्टिविटीज व्यक्ति करेगा ना, तभी जाके उस व्यक्ति को पता लगेगा, अरे सच में मेरे अंदर कमी है। समझ रहे? कई उदाहरण है, मैं आपको बताया था, वो यहाँ जाया करता था मैं। कई सारे धनी लोग होते हैं, है कि नहीं, पैसे वाले होते हैं, मगर वो हमेशा पैसों को यूज करने में, अपने आप को अपने लिए यूज करने में, बहुत सारे चीजों को भोग करने में वो खर्चा करते हैं उस चीजों को, और खर्चा करके वो आनंदित रहते हैं, वो सोचते हैं कि यही आनंद है करके। मगर एक व्यक्ति से हम मिले थे, मैं आपको बताया, कई बार उसके बारे में बताता रहता हूँ, कि उस व्यक्ति को जब मिला तो उनके घर में हर शनिवार को हमने प्रोग्राम करते थे, 4 साल प्रोग्राम किए, 3 साल कंटिन्यूस हर शनिवार को। बंसल, दीपक बंसल करके व्यक्ति है, अभी वो पूरा मंदिर का प्रोजेक्ट वही संभाल रहा है, मीरा रोड का, कई करोड़ रुपए वो दे चुका है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो पहले से उसके पास पैसा था, सब था, और वो सब जगह दान देता था, स्कूल में इधर उधर दान देता था, अपने सीए टीम को लेके किधर जाता था, खुद स्पॉन्सर करता था, बहुत सारे एक्टिविटीज करता था, फिर भी उस व्यक्ति को क्या था कि मंदिर भी जाता था, बहुत सारे मंदिर जाता था, तीर्थ स्थानों को भी जाता था, सब करता था, मगर उसके अंदर एक था कि कुछ तो अजीब सा है, कुछ कमी है, और भी कुछ होना चाहिए, इसलिए ज्यादा ज्यादा दान देता था कि और खुश हो जाऊं मैं करके, मगर वो कमी उसको पता लग रहा था। और लोग हैं जो कभी मंदिर, मस्जिद, साधु संत, दान, ये सारे चीजों के ऊपर रुचि नहीं लेते, वो जस्ट वो अपने सेंस में लगे रहते हैं। देखो, उन लोगों को वो कमी का महसूस नहीं होता है, वो खाली यही आनंद है करके वो सोचते रहते हैं। एक तो ये हो गया। उसके अंदर ये कमी का महसूस क्यों हुआ, क्योंकि ये दान धर्म में लगा था इसीलिए। दूसरा, जो व्यक्ति शास्त्रों को सुनता है और पढ़ता है, चाहे वो व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना ही क्यों ना करे, चाहे वो संतोषी मां जैसा व्रत भी क्यों ना करे, उस व्यक्ति को ये चीज का फीलिंग होगा, उस व्यक्ति को इस कमी का फीलिंग महसूस होगा निश्चित रूप से। आपको मालूम है श्रीमद् भगवद गीता की 30वें अध्याय में जब भी ये कर्म योग के बारे में बतलाया जाता है, 30वें अध्याय में 4वें अध्याय में, वहां पे एक योग की सीढ़ी करके सिखाया जाता है। मैं शायद प्रिंट दिया था एक बार गीता क्लास में, योग सीढ़ी, योगा लड़क। उसमें योग सीढ़ी में क्या होता है मालूम है कि किस प्रकार से व्यक्ति पशु स्तर से लेकर वो एकदम से कृष्ण भक्ति तक और कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्राप्त करने तक उठ पाएगा, ये उसमें है, वो सीढ़ी है, स्टेप वाइज स्टेप वाइज। जब व्यक्ति पशु स्तर में रहता है उसके मन में जो एक ही विचार रहता है कि कैसे मैं इंद्रिय भोग करूं, ये एकदम पशु स्तर है, एन के न प्रकार है इंद्रिय भोग करना और कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति को कैसे लाया जाता है मालूम है, मनुष्य स्तर में लाने के लिए उसको शास्त्रों का इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है कि देखो तुम यही करो, इंद्रिय भोग ही करो, मगर डायरेक्ट इस प्रकार से इंद्रिय भोग करना मतलब क्या होता है मालूम ना, नरक में दुख भी भोग सकते हैं, मगर इंद्रिय भोग करो, मगर कैसे, थोड़ा सा नियमों को पालन करो, जस्ट कुछ नियम है, इन इन दिनों में भोग करना चाहिए, इन इन चीजों को खाना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर डे में नहीं खाना चाहिए। अच्छा ऐसे क्या, हाँ ऐसे करने से आपको क्या नहीं होगा, वो नर्क यातना नहीं मिलेगा। व्यक्ति सोचेगा हाँ भोग कर रहा हूँ, बाद में कष्ट भी मिलेगा क्या, ठीक है ऐसे भोग करता हूँ, फिर थोड़ा सा नियम, तो जस्ट वहां पे नियम ऐड हुआ। फिर देखो तुम अगर ये यज्ञ करोगे ना या ये देवता की पूजा करोगे ना, काली माता के पास जाओगे ना, तो आप तुमको मांस खाना है तो अमावस के रात्रि में एकदम रात को 12 बजे गांव से बाहर एक घने जगह पे जाकर आप क्या करो, एक बकरी लेके जाओ और बकरी के कान में बोलो मांसह, मैं तुमको मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मार देना, है कि नहीं, ऐसे बोल के उसका गला काटो और उसको काली माता को ऑफर करो, ऑफर करके लेके आओ, उसका 75% क्या है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो और 25% तुम उसको खाओ। तो इससे क्या होगा, नहीं इससे तुमको मांस भी खाने के लिए मिलेगा और साथ साथ में क्या होगा मालूम है, तुमको वो जो पाप है वो भी नहीं लगेगा, वो ऐसा है तो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। दूसरा, आपको मालूम है क्या, तुम अगर ये यज्ञ करोगे तो तुमको पुत्र संतान मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो तुमको धन मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तुमको अच्छा पत्नी मिलेगा, हो तो फिर मुझे ये यज्ञ करना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, यज्ञ के पास बैठेगा। यज्ञ के पास बैठने से पहला है यज्ञ मीन्स विष्णु, दूसरा है यज्ञ में आहुति देने के लिए मंत्रों का उच्चारण होता है, तो शास्त्रों का वाणी शब्द जो है श्लोकों का शब्द उसके कान में प्रवेश करता है, इसके द्वारा उसके अंदर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चालू होता है, फिर उसको हायर टेस्ट के लिए वो कमी उसके अंदर महसूस होता है कि कुछ तो और चाहिए एक्चुअली, फिर वो इंक्वायरी करता है धीरे धीरे से शास्त्रों के बारे में, देवताओं के बारे में, और इस प्रकार से धीरे धीरे से उस व्यक्ति का प्रगति होके कि सुप्रीम लॉर्ड को जानने तक वो व्यक्ति आता है, इस योगा लर्नर में एक्चुअली सिखाया जाता है। तो व्यक्ति के अंदर कैसे आया, जस्ट वो सेंस एंजॉय कर रहा है तो फिर ये नहीं आ पाएगा। उस व्यक्ति अगर ये न कहना पकार किधर ना किधर धार्मिक संस्था में जा रहा है या कुछ पढ़ रहा है, शास्त्रों को पढ़ाई कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है, इस द्वारा उस व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं सहायक होगा, हालांकि अभी भटका हुआ है या ऐसे ऐसे चीजों को कर रहा है। देवता पूजा करना गलत है ऐसा नहीं, वो तो वेदों में शास्त्र में बोला गया भाई करो करके, है कि नहीं, हाँ उससे अच्छा है और बुद्धिमान व्यक्ति को सुप्रीम लॉर्ड का पूजा करना है कि नहीं, एक ही व्यक्ति का पूजा करना बाकी सारे चीजें मिल जाएंगे, एक एक देवता का पूजा करके कितना संतुष्ट करेंगे, 33 करोड़ है वो सब, है कि नहीं, उतना समय है नहीं अपने पास, इतना झंझट मारे क्यों, शॉर्टकट प्रोसेस अगर मिल रहा है तो करके। तो ये चीज का जो कमी है उनको महसूस होगा धीरे धीरे से। कई सारे संस्था में कई सारे पूजा करने वाले देखिए जब हमसे मिलते हैं तो उन लोगों का आवश्यकताओं को बतलाते हैं कि वहां गए वहां गए वहां गए, मगर हमको उस प्रकार का जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिला। तो ये जो चीज है कि शास्त्रों का अध्ययन है, नियमों का पालन करना, व्रत पालन करना, सेलिब्रेसी, देवताओं की पूजा, दान, दया, अहिंसा, पुण्य कर्म, इस प्रकार के कार्यों को करने पर व्यक्ति के अंदर उसको अपने आप से महसूस होगा कि असलियत में मुझे कुछ जो चीज चाहिए वो कमी है। जैसे व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने पूरे ग्रंथों को रचना किया, नियमों को रचना किया, व्रतों को पालन कर रहे, सब कर रहे, फिर भी ये कमी, इसलिए उनको पता लगा कि ये कमी है मेरे अंदर कुछ तो, जो मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए व्यक्ति को इन सारे चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, है ना, दान, तपस्या और यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, भगवत गीता में बताया गया। तो ये लाइन एक्चुअली उनके लिए है, व्यास देव जी के लिए है। और जहां तक नारद मुनि की बातें हैं तो उनको कैसे समझेंगे, एक तो है तीनों लोकों में विचरण करते हैं। अभी तीनों लोक मतलब क्या है, तीनों लोक मतलब कितने लोग होते हैं एग्जैक्टली, 14 लोक होते हैं ना ब्रह्मांड में, तो यहाँ तीन लोक बताए गए, मतलब किधर,
कुछ नीचे के लोक, पृथ्वी लोक और ऊपर के लोक।
हाँ, ये 14 लोगों को फिर से तीन लोक बना दिया जाता है। कैसे, पृथ्वी से ऊपर के लोगों को ऊपरी लोक बोला जाता है या स्वर्ग लोक बोला जाता है, पृथ्वी के नीचे के लोगों को पाताल लोक बोला जाता है, और बीच में जो पृथ्वी लोक है उसको भूलोक कहा जाता है। तीनों लोक मतलब स्वर्ग की सभी 6, नीचे की 7 और बीच वाला 1, ये सबको मिला के तीनों लोक कहा जाता है। और कभी कभी भूर भुवत स्वः इसको तीनों लोक करके कहीं कहीं पे बोलते हैं, मगर भूर भुवत स्वः भूलोक, भूवर लोक उसके ऊपर और स्वर्ग लोक उसके ऊपर है, वो नीचे नहीं है, तीनों की तीनों ऊपर ही है, इसलिए वो उसको नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो स्वर्ग, मर्त्य, पाताल मतलब ये तीन है, ऊपर के लोगों, नीचे के लोगों और बीच वाला लोग। तो नारद मुनि ज्यादा से ज्यादा ये तीन लोग में घूम पाते हैं। उसके ऊपर क्या है, विरजा नदी, उसके बाद आध्यात्मिक जगत है, उधर नहीं जाते हैं, इधर ही घूम रहे हो। तो फिर उधर जाते हैं कि नहीं है, उसका बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, अभी एक्चुअली कंफ्यूज हो गए बताने से, क्योंकि नारद मुनि भी अलग अलग है। अच्छा, दूसरा, कभी कभी वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, वो सब का क्या, हाँ, क्योंकि भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत, श्री जगन्नाथ बलदेव जमाना में भौतिक जगत में भी एक ऐसी जगह है जहां पे विष्णु निवास करते हैं, वो शाश्वत है, वो ध्रुवलोक है। ध्रुवलोक में भगवान विष्णु क्षीर सागर अर्थात मिल्क ओशन में वो अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए रहते हैं, वहां लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। वही व्यक्ति है जो क्षीरोदक्षाय विष्णु, और जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, और वो परमात्मा का मूल जो है ना वो वहां पे रहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये नारद मुनि या देवी देवता जो भी है, वो जब भ्रमण करते हैं तो उधर भी जाते हैं, देवी देवताओं का प्रॉब्लम्स होता है तो वहां जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। सुनते हैं ना, अरे देवी देवता लोग प्रॉब्लम हो गया, विष्णु के पास शरण में गए, प्रार्थना किए कृष्ण के आगमन के लिए, तो किधर गए थे, वो मिल्क ओशन के सामने गए थे देवलोक में, उधर नहीं, उधर दर्शन नहीं हो पाता है एक्चुअली, वहां विष्णु का भी दर्शन देवताओं को दुर्लभ है, वो नहीं दर्शन देते, वो खाली जो साउंड आया, और साउंड भी देवताओं को नहीं सुनाई पड़ा, टेलीपति के द्वारा। फिर वो ब्रह्मा जी को आएगा, फिर ब्रह्मा जी अनाउंस करेंगे, सुनो सुनो एक्चुअली उन्होंने ऐसा मैसेज भेजा है, सब ठीक है, फिर आप सब काम में लग जाते हैं।
नारद जी को दर्शन होता है,
नारद जी को दर्शन हो जाता है, वो भक्ति शक्ति का ये है ना, इस प्रकार से वो तीनों लोगों में घूमते रहते, स्पेशल उनका तो यान है, मन यान एक नहीं, मन के द्वारा वो किधर भी घूमते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे हृदय की बातों को जान सकते हैं, जैसे कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो हमारे हृदय की बातों को जान सकते हैं। इसीलिए व्यास देव जी उनको कह रहे हैं कि कृपया मेरे अंदर की बस सभी नियमों को पालन कर रहा हूँ, फिर भी कुछ तो कमी है, इसे प्लीज बताओ मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस बात को बताते हैं। हरे कृष्ण। श्रील व्यास देव जी की, नारद मुनि की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।